الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق اور اولاد کے حقوق کا بیان جاری ہے. کچھ حقوق کا بیان ہو چکا اور کچھ مزید بیان کیے جائیں گے. اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کریں. بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کون سے والدین ہوں گے, کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا سلوک نہیں کرتے ہوں گے, لیکن جو حقیقت ہے وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اکثر و بیشتر والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں, شفقت کا سلوک کرتے ہیں, لیکن ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس اپنے دوستوں کے لیے تو وقت ہے, اپنے کاروبار کے لیے بہت وقت ہے, دیگر زندگی کی مصروفیات کے لیے بھی بہت وقت ہے. وقت نہیں ہوتا تو بچوں کے لیے نہیں ہوتا. اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج ایسا ہے کہ بچے ان کے پاس آنے سے کتراتے ہیں, اور اس کی وجہ لازمی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک نہیں کیا جاتا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. بعض لوگوں میں ڈانٹنا, مارنا, جھڑکنا, برا بلا کہنا, گالی دینا اور اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ عام ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں بچے ان سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بچوں سے شفقت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے. اسلامی تعلیمات کا اندازہ اس سے لگائے, ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کر رہے تھے, ان کو چوم رہے تھے, بوسے دے رہے تھے. وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچوں کو یوں بوسا دیتے ہیں, میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو آج تک کبھی کسی بچے کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو چھین دیا ہے تو میں کیا کروں. مراد یہ کہ بچوں سے پیار نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں رحمت, رحم, ہمدردی اور شفقت نکل چکی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سامنے آیا وہ یہ کہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب لازمی بات ہے کہ خطبہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے سامعین بیٹھے ہوئے اور خطیب خطبہ دے رہا ہے, اس کی توجہ اپنے خطبے کی طرف ہے, اپنی باتوں کی طرف ہے اور ساتھ میں سننے والوں کی طرف ہے. وہ سننے والوں کی اس حاضری کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری توجہ دے کر ان کو کلام کر رہا ہوتا, لیکن ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے دوران سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے, اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے تھے تو چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے. جیسے چھوٹا بچہ 2 سال کا 2.5 سال کا جو ہے وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا گرنے بھی لگتا ہے, سنبھل بھی جاتا ہے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے تھے تو مسجد میں جب آئے تو تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر کو چھوڑا, اپنا خطبہ ترک کیا اور منبر سے اتر کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا, آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا, اپنے ساتھ منبر پہ لائے اور بقیہ خطبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ مل رہا ہے, उसके साथ साथ औलाद के साथ जो शफकत वाला सुलूक होना चाहिए उसके बारे में भी पता चलता है कि औलाद के साथ किस तरह मोहब्बत भरा रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो लिहाजा औलाद के साथ मोहब्बत और शफकत का सुलूक करना ये बड़ी अहम चीज़ है। हम अगर गौर करेंगे तो यकीन कीजिए कि पता चलेगा कि वाकई बाज़ औक़ात हमसे इस मामले में कोताही होती है। हमारी शफकत मोहब्बत का सारा दारोमदार हमारे अपने मूड और मिजाज पे है। हम खुश हैं तो घरवाले भी खुश रहेंगे, और अगर हम खुश नहीं हैं तो क्या मजाल है घरवाले खुश रह सकते हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो क्या मजाल है कि घर के बच्चे जो है वो हमारे करीब भी फटक सकें। वजह यह है कि हम हर एक को अपने ताबे रखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए और हम दूसरों की दिलजोई के लिए खुद को नहीं बदलते। हम कहते हैं हमारी खातिर सारी दुनिया बदल जाए। हम धूप में खड़े हैं तो हम ये नहीं करते कि हम छांव में आ जाएं। हम कहते हैं कि सूरज गुरूब हो जाए और सूरज को यहाँ से हटा दिया जाए, हम नहीं हटेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। इंसान खुद पे काबू कर सकता है बनिस्बत दूसरों पर काबू करने के। तो लिहाजा औलाद के साथ जो शफकत का सलूक है वो ये समझ के करें कि ये इनका हक है और ये मेरे दीन का हुक्म है और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसे टोटल अपने मूड और मिजाज के ताबे न किया जाए। अच्छा, फिर इसके साथ एक और अहम बात कि औलाद के साथ जो शफकत का सलूक करना है, जो मोहब्बत करनी है, वो अपनी जगह बड़ी मुफीद है, बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है। अभी तो हमने इस तरफ का पहलू बयान किया कि जिसमें शफकत करने में कमी हो, दूसरी तरफ वो पहलू है कि मोहब्बत और शफकत इतना बढ़ जाए कि जिसकी वजह से बच्चा ही बिगड़ जाए। जैसे ये पहलू हमारे माशरे में ज्यादा है, यानी कि पहली सूरत जो है वो भी पाई जाती है लेकिन कम, दूसरी सूरत उससे ज्यादा पाई जाती कि औलाद के साथ इतना लाड प्यार करते हैं और उसकी हर बात इस तरह मानते हैं कि बिल आखिर बच्चा जिद्दी, अना का पक्का, अपनी बात मनवा के छोड़ने वाला, बाहर सूरत अपनी करने वाला, छोटी छोटी बात पे रूठ के बैठ जाने वाला बन जाता है। और फिर ये शय उसके मिजाज में ऐसी चलती है कि पूरी जिंदगी उसके मिजाज का हिस्सा बन जाता है। और फिर उसके साथ ये होता है कि शफकत और मोहब्बत की वजह से बहुत सी गलतियों से सरफे नजर कर दिया जाता है और फिर वही गलतियां उस बच्चे की फितरत और जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो बजाय इसके कि समझाया जाए उसको, उस पर हंस के उसे टाल देते हैं। बच्चा को गलत मुतालबा कर रहा है, बजाय इसके कि उसको समझाया जाए उसका मुतालबा पूरा कर दिया जाता है। बच्चा किसी से बदतमीजी करता है, बजाय इसके कि बच्चे को समझाया जाए और रोका जाए चेहरा फेर लिया जाता है। तो जब गलतियों से सरफे नजर किया जाए और जब इसलाह की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो यही शफकत जो पहले मतलूब थी अब वही उसकी बर्बादी का जरिया बनने लग जाती और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि शफकत होना औलाद के साथ फितरी चीज है। लिहाजा इसमें हद से तजावुज इस तरफ को करना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि कम शफकत की जाए। और आपने बड़े बड़े घरानों में ऐसी चीजें देखी होंगी कि बच्चे फिर जब बिगड़ते हैं तो कितना बिगड़ते हैं, और खास तौर पे जो अमीरों के बच्चे, वजीरों के बच्चे, नवाबों के बच्चे, बड़े बड़े ओहदे और मनसब वालों के बच्चे हैं, तो फिर जिस तरीके से वो हैवी बाइक्स लेके रोड़ों पे जाते हैं और रंग बिरंगे करतब करते हैं, या गाड़ियां छोटी उम्र में चलाते हैं और एक्सीडेंट करते हैं, और फिर उसके बाद जो तबाही मचती है और उसके बाद फिर बेचारे जिस तरह बाज़ औक़ात जख्मी होते हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं, फिर यही माँ बाप जो है सर पकड़ के बैठे होते। हालांकि जब उनके वो करने का काम नहीं था तो उनको रोका जाता, न कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि बच्चों के साथ जो मोहब्बत और शफकत है ये उनकी इस्लाह और उनकी तरबियत की राह में रुकावट ना बन जाए। ये बड़ी अहम चीज है, वरना इसका दुख बाद में खुद को उठाना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह औलाद के हुकूक में से एक अहम हक ये है कि औलाद को बुरी सोहबत से बचाया जाए। औलाद को बुरी सोहबत से बचाया जाए, औलाद की गुफ्तार कैसी है, किनके पास उठता बैठता है, कहाँ आता जाता है, इन चीज़ों के ऊपर नजर रखना जरूरी है। वरना हदीस मुबारक में फरमाया फरमाया कि इंसान अपने दोस्त की राह पर होता है, इंसान अपने दोस्त के तरीके पर होता है, तो उसे चाहिए कि इस बात को देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। तो अच्छी बुरी सोहबत के असरात जो हैं ये बड़ी दूर तक जाते हैं। तो अब जिनके पास बच्चा उठता बैठता है उनको देखना ये बड़ा अहम, ये बड़ा अहम है। तो लिहाजा अपने बच्चों के हवाले से ये ज़रूर गौर रखें, वरना शुरू में थोड़ी सी आज़ादी देना जिंदगी भर की बाद की बर्बादी बन जाती है। तो ये आज़ादी बड़ी ख़तरनाक होती है। अपने बच्चों के हवाले से इस हवाले से बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि बच्चे किन के पास उठते बैठते हैं। और यही मामला जो है ये बच्चियों के साथ भी है कि बच्चियाँ जिन दूसरी बच्चियों के पास उठती बैठती हैं उनका किरदार कैसा है, उनका अखलाक कैसा है, उनका मिलना मिलाना कैसा है, उनके शब रोज़ कैसे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से जो माएँ हैं वो गौर करें और बाप भी जिस हद तक गौर कर सकता है वो इस चीज़ को नोट करें। तो लिहाजा बच्चों के हवाले से कि उनको बुरी सोहबत से बचाना ये माँ बाप की जिम्मेदारियों में से आता है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और चीज़ जो इसी से मिलती जुलती है, जैसे बुरी सोहबत से बचाना है, इसी के साथ दूसरी चीज़ ये है कि उन तमाम चीज़ों से औलाद को बचाए जो औलाद की अखलाकी खराबियों का सबब बन सकती है। हर वो चीज़ कि जिसकी वजह से बच्चे की ज़िंदगी में मनफी पहलू आएगा, अखलाकी बुराइयाँ आ जाएंगी, गलत हरकतें आ जाएंगी, उन तमाम चीज़ों से बचाए। तो ये जो बुरे दोस्तों की मैंने अर्ज़ किया है ये तो उसमें से एक मिसाल है कि एक सूरत है कि जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं और उनकी तरबियत में ख़राबी पैदा होती है। इसके अलावा भी एक पूरी लिस्ट है इन चीज़ों की। मिसाल के तौर पे बच्चों की खराबी की एक वजह यह भी होती है कि बच्चों से पूछगछ की ना जाए कि वो क्या करते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में असलन मालूमात ही ना ली जाए, उसके अफ़ाल के ऊपर उसके आमाल के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन ना किया जाए। तो जब बच्चे से कभी पूछना ही नहीं है तो बच्चा समझ जाता है कि भाई मेरे आमाल के ऊपर और मेरे अफ़ाल के ऊपर कोई पुरसश होनी नहीं, कोई पूछगछ होनी नहीं है, तो लिहाजा मैं जो मर्जी करूँ। तो लिहाजा थोड़ा बहुत जो है वो बच्चे से जो है वो चीज़ें पूछते रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेल कूद के शौकीन हैं और खेल कूद में लगे रहते हैं, तो अब इससे उनको रोका नहीं जाता कि अपनी पढ़ाई का वक्त ज़्यादा रखें और अपने जायज़ खेलों का वक्त जो है उसके मुताबिक रखें, क्योंकि फितरी तौर पर तो बच्चे में खेलने की तरफ रगबत ज़्यादा होती है। उसकी तरफ से तो 24 घंटे खेलते रहो, वो कहेगा सोना भी नहीं है, खेलना ही है, तो बच्चे का दिल तो ये कर रहा होता। लेकिन अगर माँ बाप भी इसको छूट दे देंगे तो अब नतीजा क्या होगा कि खेल की लज्जत तालीम की मुशक्कत पर इतनी गालिब आ जाएगी कि फिर पढ़ाई में दिल लगेगा ही नहीं, फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। और होगा क्या कि जब बच्चे तालीम के जेवर से महरूम होते हैं तो फिर जहालत की कालक ही उनके ऊपर आती है, और जब जहालत की कालक आती है तो फिर जो हरकतें होती हैं वो भी जाहिलाना होती, फिर उन बच्चों के अंदर ना कोई तमीज़ होती है, ना मैनर्स होते हैं, ना ज़िंदगी का पता होता है, ना मुस्तकबिल का पता होता है, ना ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा बन सकते हैं, और फिर ये जहालत जो है ये बीसियों खराबियों की बुनियाद बनती है। इल्म बीसियों खूबियों का बीज है कि आपने इल्म का बीज बो दिया उससे बीसियों नहीं हज़ारों खूबियाँ पैदा होंगी, और आपने अगर जहालत का कांटा किसी जगह बो दिया तो उससे बुराइयों का भी एक झाड़ झंकार जो है वो बरामद होगा और ज़िंदगी जो है वो रंग बिरंगी जहालतों से भरी हुई होगी। तो औलाद की तालीम के ऊपर नज़र रखना और खेल के साथ जो उसका बैलेंस है या एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जिनको कहा जाता है, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उनके ऊपर नज़र रखना कि क्या है, कैसी हैं, कितनी हैं। तो लिहाजा औलाद की खराबियों की जो बुनियाद है उस पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, फिर औलाद की खराबियों के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब वो है घर का टीवी, क्योंकि आज के ज़माने का जो टीवी है, अगर तो 100% कोई दीनी चैनल है जो अकीदे के अतबार से भी दुरुस्त, अमल के अतबार से भी दुरुस्त, जैसे मिसाल के तौर पे मदनी चैनल, तो अगर इस तरह का है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो दुनियावी चैनल्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है एक से बढ़ के एक बुराई और एक से बढ़ के एक उसमें जो है गलत चीज सिखाई जा रही या दिखाई जा रही। आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कोई मालूमाती चीजें भी देखेंगे तो उसके दरम्यान में भी जो कमर्शियल आती है, जो एड आते हैं, वो क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट है। वो शायद ड्रामे उतने बेहयाई पर मुश्तमिल नहीं होते जितनी एडवर्टाइजमेंट होती। तो अब क्या हुआ कि जब बच्चे टीवी देखेंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा, और फिर खुदा ना खास्ता अगर टीवी के चैनल ही वो हैं कि जो हैं ड्रामों के, तो ड्रामों के अंदर तकवा तहारत नहीं सिखाया जाता, ड्रामों के अंदर को खौफ खुदा नहीं सिखाया जाता। खासतौर पर जो हमारे मुल्क के ड्रामे हैं उनमें तो लोग कसम खा के बैठे हुए कि सिवाय बेहयाई सिखाने के कुछ और सिखाना ही नहीं। और एक से बढ़ के एक खुराफात और एक से बढ़ के एक बेहूदगी दिखाना ये इन चैनल्स के ऊपर ख़त्म है। और जो जो चीज़ें वो दिखाते हैं वो अखबारात में आती रहती हैं, जो दिल जलाने वाले कॉलम निगार हैं वो लिखते रहते हैं कि चैनल्स पर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चैनल्स की शक्ल भी नहीं देखता, लेकिन तफसीलात जो है वो सामने आती रहती है कि क्या दिखाया जा रहा है। एक से बढ़ के एक गंद दिखाया जाता है, यह है चैनल्स के ऊपर आने वाले ड्रामों का हाल। तो अब अगर बच्चों को खुली छूट दे दी कि वो ड्रामे देखें तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो फैशन सीखेंगे, वो उसमें बेहयाई सीखेंगे, वो मर्द औरतों के गलत ताल्लुकात सीखेंगे, वो बेपर्दगी के नित नए अंदाज सीखेंगे, वो जुल्म व सितम के तरीके सीखेंगे, और इससे आगे की बहुत सी चीज़ें हैं कि जो शायद हम बोल भी नहीं सकते, वो सीखेंगे। तो लिहाजा बच्चों को टीवी से तो यूं समझे कि उनकी ज़िंदगी से निकाल दें, उनकी ज़िंदगी से निकाल दें, सिवाय इसके कि वही जो मैंने अर्ज़ किया कि 100% अकीदे और अमल और शरीयत के एतबार से जो ठीक है सही है सिर्फ वो दिखाएं, इसके अलावा क्लोज। तो बच्चों की तरबियत और उनकी तरबियत की खराबी के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये फिल्में और ड्रामे हैं। अच्छा, फिल्में फिर इससे आगे आ जाती हैं कि अगर फिल्में हैं तो फिर वो इससे भी दो कदम आगे चली गई कि ड्रामा तो हो सकता है कि किसी लिमिट के अंदर हो, फिल्मों के अंदर तो फिर इससे भी आगे के मामला बढ़ते जाते हैं। तो ये वो है कि जो बच्चों की तबाही का सबब बनते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ एक और चीज़ वो ये है कि अब टीवी नहीं है, या है भी लेकिन टीवी पर इतनी तवज्जो नहीं है। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया और नेट की सहूलत दे दी, इंटरनेट की सहूलत दे दी, इसके बाद तो आप भूल जाएं कि आपके बच्चे सही देखेंगे। क्यों? इसलिए कि इंटरनेट की दुनिया ही ये है कि आप सही देखने भी जाएं तो वो कान से पकड़ के गलत की तरफ लेके जाते हैं। इंटरनेट की जो खुबासत है, जो खुराफात है, वो है ये कि सिवाय इसके कि आप बहुत किस्म के उसके ऊपर वो लगा लें, रेस्ट्रिक्शंस लगा लें और उसकी वजह से आप बच जाएं, वरना आप सुनने तिलावत भी जाते हैं तो आपको कुछ और दिखा देते हैं, और ये होता है। और फिर बच्चे बच्चे तो लाजमी बात है कि वो कुछ फलसफे की बातें तो देखने इंटरनेट पे नहीं जाएंगे, तो वो जो देखने जाएंगे वो कोई खेल कूद की चीज़ें होंगी या कोई कार्टून वगैरह होंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसके साथ जो कड़ी से कड़ी और लड़ी से लड़ी मिलते हुए जहां वो आपके बच्चों को लेके जाएंगे वो तबाही है सीधी, वो हलाकत का गड़ा है। फिर उसके साथ अगर बिलफर्ज बच्चों ने गलत की तरफ एक मरतबा कदम उठा लिया तो फिर इस गलत की हद नहीं। लज्जात नफसानी और शहवात जो है वो नफसानी, उसकी फिर आगे कोई लिमिट नहीं होती, उसकी फिर आगे कोई हद नहीं होती। तो लिहाजा बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए जिसका अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है कि बच्चों को सही रास्ते पे लगाया या नहीं, तो इसके लिए जो है बच्चों के हाथ में मोबाइल उस उम्र तक ना दें जब तक कि आप बच्चे को बिल्कुल पूरी तरबियत याफ्ता करके बड़ी उम्र तक ना पहुंचा दें कि जिसके बाद बच्चा अपना भला बुरा अच्छे तरीके से समझने लगे। इससे पहले उनके हाथ में ये चीज़ें देना ये बहुत बड़ी हलाकत का सबब होता है। तो लिहाजा मोबाइल, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें, इसी तरह सोशल मीडिया के जितने फोरम्स हैं, तो सोशल मीडिया के फोरम्स जो हैं वो यूँ कह लें कि इंटरनेट जो है वो उसमें तो जो ऑप्शंस हैं वो खैर के भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो उसमें भी आगे से आगे जो है वो बर्बादी का सबब। तो लिहाजा इन चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा बचाने की हाजत है। ये बातें बाज़ का शुरू में तो समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती हैं तो फिर ऐसी समझ आती हैं कि फिर बंदा पूरी दुनिया को समझा रहा होता है कि भाई बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो। मैंने अंग्रेज़ों की वीडियोस जो है वो सुनी हैं, स्पीचेस सुनी हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर ये खबासत फैलाई है, अब वो उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीरें हो रही हैं कि कौम को बेहयाई से बचाओ, क्योंकि कौम को इसके अलावा कोई काम ही नहीं सूझ रहा, और इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के सारे मामूला धर्म भरम हो चुके हैं। और ये कौन कह रहा है, मैं नाम ब नाम बता सकता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की पार्लियामेंट्स के अंदर ये गुफ्तगू हो रही होती, और बड़े बड़े उनके फिलोसोफर के जो शायद पहले इसकी हिमायत में थे, अब रो रहे बैठ के इसको कि हम ये क्या कर बैठे। तो जहां जाके वो तबाह हुए, वहां तक जाके वापस आने से बेहतर है कि हम अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को अभी से बचाएं। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करें। अच्छा, बच्चों की जो अखलाकी खराबियां हैं उसकी एक बहुत बड़ी एक और सबब, अब हमारे यहाँ तो ये कम हो गया, और उसकी कम होने की वजह ये हो गई है कि पढ़ने लिखने का रुझान हमारे यहाँ खत्म होता जा रहा है। वो क्या है, वो है डाइजेस्ट, रिसाले, मैगजीन, नॉवल्स, और इस तरह के जो इस तरह की किस्म की किताबें हैं। क्योंकि ये जो किताबें होती हैं ये कोई इतनी साफ सुथरी, इतनी पवित्र नहीं होती। इन किताबों की जो सूरत हाल है वो ऐसी है, नावल किस चीज़ पे होता है, हो सकता है किसी ढंग की स्टोरी पे भी हो, लेकिन वो बहुत सारी बेहयाई की चीज़ों पर भी मुश्तमिल होते हैं। जो मंथली मैगजीन्स हैं, डाइजेस्ट हैं, उसकी जो स्टोरीज हैं वो भी अगर दो अच्छी होती हैं तो छह बुरी भी होती, और वो इन्हीं चीज़ों की वजह से बिक रहा होता है। फिर जो उनका जो है वो कवर पेज है, उनका जो है वो फ्रंट पेज है, वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, मेरे ख्याल में जो घर से बाहर निकल के रोड पे आता जाता होगा तो उसकी नज़र पड़ी जाती है कि क्या दुनिया में चल रहा है। फिर ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के मैगज़ीन हैं, ख़वातीन के मैगज़ीन के अंदर तो सिवाय रोमांटिक स्टोरीज़ की और कुछ कमी होता है, और उनको उस ख्वाबों की दुनिया में पहुँचा दिया जाता है कि जिसके बाद जब उनकी शादी होती है वो खाना बर्बादी बनती। क्योंकि नॉवेल्स के अंदर जो पढ़ा था, जो डाइजेस्ट में पढ़ा था, वो तो 24 घंटे हालत सुरूर में थे, वो तो हर वक्त पता नहीं कौन से जुमलेबाजियां और कौन से ऊंचे ख्यालात और कौन सी बातें चल रही थी। और अब शादी के बाद पता चला कि भाई घर में तो बर्तन भी धोने पड़ते हैं, पोछा भी लगाना पड़ता है, खाना भी पकाना पड़ता है, ये घर के और 50 किस्म के मसाइल होते हैं, हर वक्त को बन ठन के बैठना नहीं होता। तो अब वो जो नावलों की दुनिया है, जो रिसालों की दुनिया है, और इधर जो हकीकत की दुनिया है, दोनों में बेतहाशा फर्क होता है। अब अपने दिलो दिमाग में उसको पाल के बैठे हुए, और अब जो हकीकत की दुनिया में पहुंचे तो कुछ और ही नजर आ गया, तो अब निभाना मुश्किल हो जाता है। और यही हाल दूसरी तरफ लड़कों का होता है, लड़कों ने फिल्में देख के या उन्होंने जो है वो नावल पढ़ के, डाइजेस्ट पढ़ के, रोमानवी नावल पढ़ के, अब उन्होंने अपने दिलो दिमाग के अंदर पता नहीं कौन सी दुनिया बसाई होती, लेकिन जब हकीकत की दुनिया में पहुंचते हैं तो पता चलता है वो कि वो तो मसनू दुनिया थी सारी, वो तो सिर्फ ख्वाबो ख्याल की एक बुनक थी एक, और वो तो बिल्कुल फैब्रिकेटेड चीजें थी वो। तो अब ये समझ रहा होता है कि पता नहीं शादी के बाद जो है वो बीवी ने कोई तिनका नहीं तोड़ना किसी चीज का, और बस हर वक्त एक खास किस्म के खुमार के अंदर ही रहेगी, वो खुमार अगले दिन उसका बुखार बन जाता। तो ये क्या है कि जब इस तरह की चीजें पढ़ते पढ़ाते हैं तो फिर इंसान की जो बाद की जिंदगी है, शादी के बाद की जिंदगी, वो बहुत ज्यादा दिक्कतों और मशक्कतों की जिंदगी बन जाती है। तो लिहाजा औलाद को इन चीजों से दूर रखें, इन चीजों के पढ़ने का फायदा नहीं होता। इसी तरह शेर व शायरी, अब शेर व शायरी का मामला तो ये है कि शायर मिलजुल के एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, अंजुमन स्ताइश बाहमी चल रही होती है कि जनाब उसका कलाम ऐसा, उसका कलाम ऐसा, लेकिन होता क्या है, वही ले दे के वो एक मौजून का, इश्क मोहब्बत का, उसके ऊपर रंग बिरंगे अंदाज के अंदर चलते रहते हैं, तो कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं, कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं, बस। अब वो तो कर कर आके फारिग हो गए, पढ़ने वाले बेचारे पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या से क्या समझ के बैठे होते हैं। वो जो है वो मुकदमा शेर व शायरी के अंदर जो इसकी तफसीरात लिखी हैं, मेरे ख्याल में जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या हिसाब किताब है। तो इन चीज़ों की तरफ आना कोई इतना खुशगवार नहीं है, ज़रूरत है उसकी इफादियत है, तो फिर ये चीज़ें पढ़े। औलाद को बड़े हो जाएं तो इस तरह की कुछ चीज़ों की इजाज़त हो सकती है, लेकिन अक्सर व बेशतर इन खुराफात से अपनी औलाद को बचा के रखें। तो औलाद के हुकूक में से कि वो बुनियादें और वो असबाब कि जिनसे बच्चों के अखलाक ख़राब होते हैं, उन असबाब से बच्चों को बचा के रखें। एक और हक, और वो है बच्चों को बतौर ख़ास जो गुफ्तगू के आदाब है वो सिखाएं। वैसे तो आदाब की एक पूरी फहरिस्त है, आगे जाके इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी बयान भी करता हूँ कि आदाब ज़िंदगी किस तरीके से सिखाया जाए, लेकिन गुफ्तगू की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ज़िंदगी में दखल बहुत ही ज़्यादा है और जिसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी का इमेज बनता है सामने वाले के, जिसे सुन के पता चलता है कि ये बंदा कैसा है। उसमें बोलना जो है वो अहम तरीन चीज़ है, इंसान अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। ये बहुत सारे मुहावरे भी हैं इस हवाले से, अरबी जबान के भी हैं, कि तुम बोलते हो तो तुम पहचाने जाते हो। तो बोलना इंसान की पहचान है, बोलना जिंदगी के हजारों जो है वो मसाइल का हल और हजारों चीजों के अंदर काम आने वाली चीज है। तो बोलना सिखाना बड़ा जरूरी है। मैं बैरून मुल्क जाता हूँ, दीगर ममालिक में जाता हूँ, तो देखा ये है कि दूसरे मुल्कों के लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू और हमारे लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू, इतना फर्क है, इतना फर्क है कि जैसे कहा जाए कि शर्म से पानी मानी हो जाते हैं जब अपने लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं। गालियां भी हैं, तू तुकार भी है, अबे तबे भी है, ओए भी है, यानी कि हर जाहिलाना लफ्ज जो है वो हमारी बोली के अंदर शामिल है। वजह ये है कि माँ बाप ने यह सिखाया नहीं, या उन्होंने सिखाया है तो आगे बच्चे ही इतने जो है वो आगे के निकले कि उन्होंने सीखा ही नहीं। तो ये जो है ना, ये तू तुकार, अबे तबे, ओए तोए, ये वाली जहालतें जो हैं ये बच्चों से ख़त्म करें, और ये बचपन में ही ख़त्म होती हैं। ये भी आप याद रखें, बचपन में आपने तहजीब और तहजीबी गुफ्तगू सिखा दी तो पूरी ज़िंदगी तहजीबी गुफ्तगू करेंगे, और अगर जवानी तक बचपन में ना सीखी तो उसके बाद फिर यूं कह लें कि पूरी दुनिया जहान की मेहनत करके बंदे को ढंग की गुफ्तगू करना आती है। क्यों? इसलिए कि जिसे कहते हैं ना इनकलकेट होना, यानी कि उसके अंदर नक्श हो जाती है वो, और जो अंदर नक्श हो जाए ना वो बदलती नहीं, तो बोलते साथ ही पता चल जाता है ये कहाँ का बंदा है। लिहाजा बच्चों को इस हवाले से जो अल्फाज का चुनाव है और अल्फाज की अदायगी है ये सिखाई जाए, तू तुम तुम्हारा तेरा और तूने ये किया, और बाकी जो अल्फाज मैंने अर्ज किए ना कि ये अबे तबे ओए वाले जो है, ये अल्फाज बच्चों की जबान से खत्म कर दें, उसकी जगह आप जनाब। तो बच्चों को इस हवाले से आप उसका तरीका मैं अर्ज कर देता हूँ कि कैसे बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये अल्फाज कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तकरीबन तकरीबन हर समझदार इंसान इन चीज़ों को जानता है। अब क्या है कि जैसे ही बच्चे के जबान से ऐसा लफ्ज निकले तो आप उसे रोक दें, उसे समझा दें, बेटा यूं नहीं कहते, यूं कहते, बेटा इस तरह नहीं बोलते, ऐसे बोलते। ये आपका कहना मुसलसल जारी रहे, सालों जारी रहे, क्योंकि बच्चे एक मरतबा सुन के उस चीज को नहीं अपना लेते। आप बार बार रोकते रहेंगे तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि ये नहीं बोलना, ये बुरा लफ्ज है या ये मुनासिब नहीं, नंबर एक। और इससे ज्यादा इफेक्टिव ये है कि खुद आपकी अपनी जबान ठीक होनी चाहिए। अपनी जबान अगर गाली की आदी है तो बच्चे तिलावत नहीं करेंगे, बच्चे भी गाली देंगे। आपकी जबान पे अगर तू है तो बच्चे जी हुजूर नहीं कहेंगे, बच्चे भी तू ही कहेंगे। आपकी जबान के ऊपर अगर सख्त अल्फाज हैं और आप जो है किसी को जो है वो शैतान कहते हैं तो बच्चे उसको फरिश्ता नहीं कहना शुरू कर देंगे। तो जो लफ्ज आपकी जबान से है, क्योंकि बच्चे सीखते क्या हैं, जो देखते हैं, बच्चे वो ही सीखते हैं जो देखते हैं। कि ऐसा तो नहीं होता कि उर्दू स्पीकिंग के घर में जो बच्चा पैदा हो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, और इंग्लिश वाले के घर के अंदर पैदा होने वाला बच्चा फ्रेंच बोलना शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि भाई जो जबान सुनी है वही बोलनी है। तो उर्दू स्पीकिंग के घर में जो बच्चा होगा जब सुनेगा उर्दू तो बोलेगा भी उर्दू, सुनेगा इंग्लिश तो बोलेगा भी इंग्लिश, सुनेगा फ्रेंच तो बोलेगा भी फ्रेंच। तो ये हो नहीं सकता कि पैदा अंग्रेज के घर में हुआ है बोल रहा है फ्रेंच वहां पर। इसी तरीके से जैसे जबान है इसी तरह जबान के अल्फाज हैं, आप जो लफ्ज बोलेंगे बच्चा वही सीखेगा। इसलिए बातों का क्या होता है कि घर में बच्चे बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन चंद दिनों बाद क्या पता चलता है कि बच्चे की जबान से ऐसा कोई लफ्ज सुनते हैं कि बंदा हैरतजदा हो जाता है, ये बच्चे ने कहाँ से सीख लिया। पता चलता है स्कूल से सीख के आया। क्यों? इसलिए कि इसने वहां सुना तो अब उसको इस्तेमाल कर दी। अब अगर वहां तो सुना नहीं सुना, घर में सुन रहा है, तो घर में सुनते हुए फिर कैसे हो सकता है कि सुने आपसे कुछ और बोले कुछ और। तो लिहाजा आप अपने अल्फाज को दुरुस्त करें, अपने अल्फाज को। मेरा मुशाहदा है और आपका भी मुशाहदा होगा, जो माँ बाप चीख चीख के बोलते हैं उनके बच्चे भी चीख चीख के बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता यह है कि बोलना ही ऐसा होता है। जो माँ बाप बड़े तहम्मुल से बोलते हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह तहम्मुल से बोलते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने सीखा ये होता है कि तहम्मुल से बोलना होता है। तो जैसा माँ बाप के अल्फाज अंदाज होंगे, बच्चों में वही आएंगे। इसीलिए मैंने पहले भी एक सिलसिले में कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बच्चे बन जाएं, तो उनसे पहले आप अच्छे बच्चे बन जाएं। आपकी जबान, आपके अल्फाज, आपका अंदाज, ये दुरुस्त होगा तो बच्चों का दुरुस्त होगा। तो ये गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू जिंदगी की बड़ी बुनियादी चीज है, बड़ी बुनियादी चीज है। इसे जरूर दुरुस्त करें, वरना यकीन करें कि हमारे माशरे का हाल नहीं है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी एक ज़माने में, उस रिसर्च को मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकता, वो लिसानी तरफ वो चली जाती है, कि मुख्तलिफ ज़बानों पे रिसर्च हुई कि दुनिया की कौन सी ज़बानें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गंदे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है ना वो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो माजरत के साथ वो हमारे ही मुल्क की कुछ ज़बानें थी। तो इसलिए ये जो बदनामी है, उससे बेहतर है कि जो हमारा इस्लामी अखलाक है, जो हमारा दीन हमें कहता है कि अच्छी बात बोलो, वकूलु कौलन सदीदा, सीधी बात कहो, उल्टी नहीं। या फरमाया कि कौले मारूफ, कौल मारूफुन, अच्छी बात कहना। फरमाया कि ये सदके से भी बेहतर है, अच्छी बात कहना सदके से भी बेहतर है। और फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, कि जो हमारे दीन है, जो हमारा ईमान है, जो हमारे ईमान की जान है, जो उस्वा हसना है, जिनका अमल हमारे लिए दलील है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक, सुभान अल्लाह, मोतियों जैसे। अहादीस का जखीरा मौजूद है ना, लाखों की तादाद के अंदर अहादीस हैं। तकरार हजफ कर दें तो तब भी 20-25 हज़ार हदीसें हैं। वो जो 20-25 हज़ार हदीसें हैं, यानी बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उनको पढ़ के देखें, कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, कितने आसान अंदाज के अंदर बात की गई है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम था वो ये था, और हम और हमारे बच्चों का और मुसलमान कहलाने वालों का जो कलाम है वो हो ही ऐसा कि किसी महज़ब जगह पेश करने के काबिल ना हो, यानी बहुत सारों का। तो ये बड़ी सख्त बात है। तो गुफ्तगू के अंदर खुद भी अच्छी गुफ्तगू करें, औलाद को भी अच्छी गुफ्तगू सिखाएं। औलाद के हुकूक में से एक और चीज़ है, और वो है कि औलाद को शुरू से ही इत्तिबाए सुन्नत का दर्स दें। क्योंकि मेरे जो मुखातब हैं, जिनसे मैं कलाम कर रहा हूँ, ये मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, तो मुसलमानों के लिए जो रोल मॉडल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की मोहब्बत और आपकी सुन्नत की पैरवी, ये दो चीज़ें हमारे लिए बुनियादी तरीन चीज़ों में से हैं। और इसका हमें हुक्म है, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ। एक, नबी पाक अलैहि सलाम की मोहब्बत। दूसरा, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरा, कुरान मजीद की तिलावत। फरमाया तीन बातें सिखाओ। तो लिहाजा नबी पाक अलैहि सलाम की मोहब्बत सिखाना जो है, ये हमारे दीन की तालीमात में से। और मोहब्बत सिखाने का तरीका क्या है? आप बच्चों को सीरत की बातें बताएं, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के मुजजात सुनाएं, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के अखलाकी वाक़ियात सुनाएं, आपकी जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो बताएं। आप जितना तस्किरा करेंगे, जितनी मोहब्बत से तस्किरा करेंगे, उतना उनके दिलों के अंदर प्यार बैठेगा। फिर उसके साथ नाते पढ़े सुने, बच्चों को नाते पढ़ने पर सुनने पर लगाएंगे, बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। अच्छा, अब अगली बात, इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार है वो सिखाना, इसके दो तरीके हैं। सुन्नतें सिखाने का जो जो मुअस्सर तरीका है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो ये है कि बच्चों को ये सिखाएं कि ये सुन्नत है। आप बच्चों से कहेंगे ना कि खाने की ये सुन्नत है, पीने की ये सुन्नत है, सोने की ये सुन्नत है, चलने की ये सुन्नत है, गुफ्तगू की ये सुन्नत है। तो अब जब आप उनको सिखाएंगे तो उनको इल्म आएगा, बगैर सिखाए तो इल्म नहीं आ सकता। तो एक तरीका है कि आप उनको सुन्नतें सिखाएं, सुन्नतें सिखाएंगे तो उसको फॉलो भी करेंगे। दूसरे नंबर पे है कि जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करवाएं, सिर्फ जबान से कहना दें, बल्कि बच्चों को उसका आदी बनाएं कि वो अपने मामूलात को उसके मुताबिक रखें। तो अब जब ये वाला तरीका आप इख्तियार करेंगे तो इससे वो सुन्नतें बच्चों के मिजाज में दाखिल हो जाएंगी। मैंने अपने घरों में देखा है कि जैसे हमारे यहाँ मामूल है हमारे घरों में जो मजहबी घराने होते हैं वहाँ पर, कि मिसाल के तौर पे पानी पीना है तो बैठ के पीना है। अब किसी जगह पानी का गिलास रखा हुआ है और आसानी है कि खड़े खड़े पी लें, लेकिन चूंकि बच्चों ने माँ बाप को कभी खड़े होकर पानी पीते देखा नहीं और बच्चों से भी ये कहा हुआ कि बेटा बैठ के पानी पीना है, तो वो पानी का गिलास पकड़ के वहीं बैठ जाएंगे और बैठ के पानी पियेंगे। वजह यह है कि उनकी तरबियत और उनकी प्रैक्टिस इसके ऊपर हुई है। यही मामला और बीसियों चीजों का है कि जब आप कोई शय उनके मामूल में शामिल कर दें कि आप लिबास पहनने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, तो बच्चे लाजमी तौर पर वही करेंगे। जूता पहनते हुए दायां जूता पहले पहनना है, बायां बाद में, उतारते हुए इसके बरक्स करना है, बच्चे वैसे ही करेंगे। तो बच्चों को सुन्नतों का ताबे और फॉलोअर बनाने का तरीका ये है कि एक उनको सिखाएं और दूसरा उनसे करवाएं। जब सिखाना और करवाना ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर बच्चे पूरी ज़िंदगी उस पर अमल करते हैं। तो खाने पीने उठने बैठने इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें जो भी सुन्नतें हैं इस पर बाकायदा अमल करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बच्चों में जो मोहब्बत रसूल पैदा होनी चाहिए वो भी होगी और जो इत्तिबाए सुन्नत उनकी तबीयत और उनकी ज़िंदगी में आनी चाहिए वो भी इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन जाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।